हेलो। प्राथमिक समूहों की आंतरिक विशेषताएं, संबंधों की प्रकृति। प्राथमिक समूहों की भौतिक विशेषताओं से संबंधों की कुछ ऐसी विशेषताएं प्रकट होती हैं जो प्राथमिक समूहों के लिए आवश्यक हैं। इन्हें मानसिक अथवा चरित्रगत विशेषताओं के नाम से भी पुकारा जाता है। यहाँ इन्हीं विशेषताओं का वर्णन किया जा रहा है। नंबर 1, उद्देश्यों की समानता। एक प्राथमिक समूह में सदस्यों की इच्छाएं तथा प्रवृत्तियां प्रायः समान होती हैं। इसी कारण वे साथ साथ रहते हुए भी समान उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रयत्न करते हैं। वे संसार को एक ही दृष्टि से देखते हैं। दो मित्रों के प्रायः एक से दृष्टिकोण पाए जाते हैं। प्राथमिक समूह में प्रत्येक सदस्य दूसरे के हित को ही अपना उद्देश्य बना लेता है। उदाहरण के रूप में माता पिता अपने बच्चे के सुख दुख को ही अपना सुख दुख मानते हैं। उद्देश्यों की समानता के कारण ही प्राथमिक समूह के सदस्यों में हम की भावना तीव्र होती है। यहाँ सदस्यों के व्यक्तित्व तो समूह में विलीन हो जाती है। नंबर 2, संबंध स्वयं साध्य होते हैं। प्राथमिक समूह में संबंध किसी स्वार्थ अथवा उद्देश्य की पूर्ति के साधन के रूप में नहीं होते। यहाँ संबंध स्वयं ही अपने आप में साध्य या लक्ष्य होते हैं। प्राथमिक समूह की सदस्यता इसलिए ग्रहण नहीं की जाती है कि उससे किसी लाभ या स्वार्थ की पूर्ति होगी। ऐसे समूहों का उद्देश्य तो प्राथमिक संबंध स्थापित करना ही होता है। इस संबंध में डेविस ने लिखा है कि यह संबंध संविदा, आर्थिक लाभ अथवा राजनीतिक उद्देश्यों से प्रभावित नहीं होते, बल्कि व्यक्तिगत, आत्मिक, भावनात्मक एवं अपने आप में पूर्ण होते हैं। नंबर 3, संबंध वैयक्तिक होते हैं। प्राथमिक समूहों में पाए जाने वाले संबंध वैयक्तिक प्रकार के होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि समूह में प्रत्येक व्यक्ति की अन्य लोगों में व्यक्तियों के रूप में रुचि होती है। माता पिता तथा बच्चों में, भाई बहन तथा भाई बहन में तथा मित्रों में वैयक्तिक संबंध पाए जाते हैं। ये संबंध हस्तांतरित नहीं किए जा सकते। मित्र अथवा माता या पिता का स्थान कोई अन्य व्यक्ति नहीं ले सकता। किसी की मृत्यु हो जाने पर ऐसे संबंध स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। ऐसे संबंधों में एक के स्थान पर दूसरे का प्रतिस्थापन नहीं किया जा सकता। प्रोफेसर डेविस ने बतलाया है कि एक नवीन वैयक्तिक संबंध स्थापित किया जा सकता है, एक पुराना वैयक्तिक संबंध समाप्त किया जा सकता है। संभवतः यह चालक शक्ति जिसने संबंध को प्रारंभ करवाया था दूसरे को प्रेरणा दे सकती है, लेकिन एक ही संबंध में एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरे की प्रतिस्थापना नहीं की जा सकती। इसके विपरीत एक व्यक्ति से दूसरे को हस्तांतरित किया जा सकने वाला संबंध अवैयक्तिक संबंध है। एक स्कूल, दफ्तर अथवा फैक्ट्री में कार्य करने वालों के संबंध में अवैयक्तिक प्रकार के होते हैं। वहाँ एक व्यक्ति का स्थान दूसरा आसानी से ले सकता है। हम ग्राहक के रूप में कोई वस्तु किसी भी दुकान से खरीद सकते हैं। हमारे लिए वस्तु का महत्व है, न कि दुकानदार का। लेकिन वैयक्तिक संबंध में व्यक्ति का व्यक्ति के रूप में महत्व पाया जाता है। यहाँ किसी का स्थान कोई दूसरा व्यक्ति नहीं ले सकता। नंबर 4, संबंध संपूर्ण होते हैं। प्राथमिक संबंध में संपूर्णता का गुण पाया जाता है। ऐसे संबंध में व्यक्ति के जीवन का केवल एक ही पहलू नहीं होता, बल्कि व्यक्ति अपनी संपूर्णता के साथ इसमें भाग लेता है। उदाहरणार्थ, एक मित्र दूसरे मित्र के जीवन के किसी एक पक्ष से संबंधित नहीं होता है, वह तो उसके संपूर्ण जीवन में रुचि लेता है, उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य, विवाह, पारिवारिक जीवन सभी में। अतः यहाँ संबंध में संपूर्णता पाई जाती है। नंबर 5, संबंध का स्वतः विकास। प्राथमिक संबंध स्वतः स्वाभाविक रूप से बनते हैं। इनके लिए किसी पर कोई दबाव नहीं डाला जा सकता। कोई किसी को मित्र बनाने को, किसी से प्रेम करने को, किसी के प्रति स्नेह अथवा श्रद्धा रखने को बाध्य नहीं कर सकता। प्राथमिक संबंध तो ऐच्छिक प्रकार के होते हैं। किसी के उकसाने से ऐसे संबंध स्थापित नहीं होते। ये संबंध तो व्यक्ति की स्वयं की इच्छा से ही बनते हैं, स्वतः ही विकसित होते हैं। नंबर 6, प्राथमिक संबंधों की नियंत्रण शक्ति। संबंधों की संपूर्णता एवं घनिष्ठता के कारण व्यक्ति का अस्तित्व साधारणतः प्राथमिक समूहों में विलीन हो जाता है। प्राथमिक संबंधों के कारण व्यक्ति एक दूसरे के साथ ऐसा बंधा रहता है कि वह कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता जो समूह के अन्य सदस्यों के लिए कष्टदायी हो अथवा जिससे आदर्श प्रतिमानों की अवहेलना होती हो। प्राथमिक संबंधों के कारण ही परिवार या मित्र समूह अपने सदस्यों के व्यवहार सरलता से नियंत्रित कर पाता है। व्यक्ति राज्य के कानूनों की अवहेलना कर सकता है, परंतु अपने प्राथमिक समूहों के आदर्श नियमों को नहीं तोड़ सकता।